ओम शांति, ओम शांति। पिछले दो दिनों से राजयोग अभ्यास के सत्रों में हमने समझा साधक कौन है, किसको योग लगाना है और साध्य कौन है, किससे योग लगाना है। तो अभी हम समझेंगे उसकी विधि क्या है, कैसे भगवान से संबंध का अनुभव करें, कैसे उसे याद करें। जैसा बहन कह रहे थे तो राजयोग अर्थात सर्वोच्च संबंध या सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध। ऐसे तो दुनिया में भी हमारे संबंध हैं, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ संबंध नहीं है या सर्वोच्च संबंध नहीं है, सर्वोच्च प्राप्ति कराने वाले संबंध भी नहीं है, क्योंकि वो परिवर्तनशील हैं। परिवर्तनशील हैं क्योंकि व्यक्ति की मनस्थिति परिस्थिति बदल जाती है तो संबंध भी बदल जाता है। जो व्यक्ति सुख देता है वो दुख भी देता है, जो प्रेम देता है वो नफरत भी कर सकता है। हम सब अनुभवी हैं अपने जीवन में, लेकिन परमात्मा तो सदा सुख का दाता है। तो इसीलिए ये सर्वोच्च संबंध है और राजयोग हमें स्वयं का राजा बनाने वाला योग है। राजयोग से हम अपने कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनते हैं। सामान्यतः हम कर्मेंद्रियों के गुलाम होते हैं, यानी हमारी इंद्रियां हमें जैसे चलाती हैं वैसे हमारा जीवन चलता है। जो नहीं देखना चाहिए वो हम देखते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए या करना चाहिए वो हम करते हैं। लेकिन स्वयं पर अधिकार माना, जो देखना है बोलना है सुनना है वो हमारे अधिकार में है। तो धीरे धीरे योग अभ्यास से ना स्वयं पर अधिकार हमारा होने लगता है। फिर राजयोग हमें राजाओं का राजा बनाने वाला योग है। राजाओं के राजा हैं देवता, क्योंकि देवताओं की पूजा राजा भी करते हैं। और राजयोग के अभ्यास से हमारे संस्कार दिव्य होते हैं, तो हमारा जो जन्म होता है वो देवताई कुल में या श्रेष्ठ कुल में होता है। इसीलिए कहा कि ये राजाओं का राजा बनाने वाला योग है। संस्कारों के अनुसार ही आत्मा जन्म लेती है। फिर राजयोग में अनेक राज समाये हुए हैं, उन राजाओं को समझ करके ही हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो हमने आत्मा के राज को जाना, परमात्मा के राज को जाना, और भी विषय हैं जो राज स्पष्ट करते हैं, वो सब यहाँ सम्मेलन में तो आप नहीं सुन पाएंगे, वो तो फिर आप अपने स्थानों पर सेवा केंद्रों पर। राजयोग का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो पूरा आप समझ पाएंगे। तो ये सब जो राज हैं जीवन के सत्यों के, वो समझने के बाद ही हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। और ये स्वयं परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ योग है, ये किसी भी महात्मा ने किसी गुरु ने नहीं सिखाया है, स्वयं शिव बाबा हमें ये राजयोग सिखाते हैं। आपने समझा कि शिव बाबा का कैसे अवतरण हुआ है इस धरती पर और उन्होंने ही ये सारा ज्ञान दिया है। तो राजयोग सभी योगों का फल देने वाला है। जितने भी योग भारत में किए जाते हैं राजयोग में सब समाये हुए हैं। राजयोग एक बांध की तरह है, जैसे नदी पर बांध बनाते हैं तो उस पानी का संचय करके सदुपयोग करते हैं, उसे पीने में प्रयोग करते हैं, सिंचाई में प्रयोग करते हैं, बिजली बनाने में प्रयोग करते हैं, और अगर ऐसे ही उसको बहने दिया जाए तो पानी व्यर्थ चला जाएगा, या अगर उसमें बढ़ जाए पानी, नदी में कभी भी पानी बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाए तो वो बहुत जन धन की हानि भी हो सकती है, तो उसका सदुपयोग करते हैं। ऐसे ही योग के द्वारा हम अपने मन की शक्तियों का संचय करते हैं, नहीं तो हमारे मन की शक्तियां व्यर्थ जाती हैं, है ना। ऐसे ही हम कुछ भी सोचते रहते हैं, जैसे कहते हैं हमारा मन एक विचारों के जंगल की तरह होता है, परिस्थितियों के वश, व्यक्तियों के वश, वातावरण के वश, या जो भी मीडिया के प्रभाव में हम होते हैं उसके वश हम कुछ ना कुछ व्यर्थ सोचते रहते हैं। लेकिन योग के द्वारा हम अपने मन को दिशा दे पाते हैं, और तब जो लक्ष्य हम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, जो सफलता हमें मिलनी चाहिए, वो फिर हम हासिल करते हैं। और राजयोग एक चार्जर की तरह भी है, जैसे डिस्चार्ज बैटरी को हम चार्जर में रख के पावर सोर्स से कनेक्ट करके चार्ज करते हैं। आज कितना भी महंगा मोबाइल हो, लेकिन अगर डिस्चार्ज है तो उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता, तो चार्ज करना आवश्यक है। तो ऐसे ही हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को, परमात्मा रूपी पावर सोर्स जो सुप्रीम पावर है, उससे जोड़कर हम चार्ज करते हैं। तो बैटरी डिस्चार्ज क्यों होती है? क्योंकि उसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और जब हम उसको चार्ज करते हैं तो फिर से उसके केमिकल कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो बैटरी चार्ज होती है। तो ऐसे ही हम भी देखते हैं, जब मन की शक्ति कम होती है तो हमारे मन वचन कर्म में कोई तालमेल नहीं होता, हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, और करते कुछ और हैं। लेकिन जब मन शक्तिशाली है, बैटरी चार्ज है, तो फिर जो हम सोचते हैं वो करने की शक्ति भी हमारे पास होती है, यानी तीनों में एक सामंजस्य हो जाता है। और राजयोग सभी योगों का फल देने वाला है, जिसे कहा भारत में लगभग 7-8 प्रकार के योग किए जाते हैं, उसमें है ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, समत्व योग, भक्ति योग, संन्यास योग, हठ योग, क्रिया योग, और भी हैं विपस्सना योग, जैन मेडिटेशन, बहुत सारे योग हैं जो करते हैं। तो राजयोग ज्ञान योग है, क्योंकि ये ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान माना समझ, तो हमें योग में पूरी समझ है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा कौन है, कहां रहते हैं, उनसे मेरा संबंध क्या है, मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है ये योग करने से। तो हम कोई अंधश्रद्धावश योग नहीं कर रहे, लेकिन पूरा समझ से, ज्ञान से हम योग का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए ये ज्ञान योग है। फिर ये बुद्धि योग है, क्योंकि मन और बुद्धि के माध्यम से हम परमात्मा से संबंध का अनुभव करते हैं। ये अदृश्य माध्यम है, दिखाई नहीं देता है कि हमारा ईश्वर से कोई संबंध हो रहा है, लेकिन होता है। जैसे आज हम अदृश्य माध्यमों के अनुभवी हैं, विज्ञान के युग में हम मोबाइल से बात करते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हमारे कोई मित्र रहते हैं, हमारे संबंधी रहते हैं, हम बात कर लेते हैं, तो कैसे बात होती है? दिखाई देने वाला तो कोई कनेक्शन नहीं है, कैसे बात होती है? मेरे मोबाइल सेट से तरंगे निकलती हैं और वो टावर से होते हुए दूसरे के सेट तक पहुंचती हैं और फिर वहां से भी यही प्रक्रिया होती है और हम ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे कि हम सामने बात कर रहे हों। आज हम रिमोट का अनुभव, रिमोट का प्रयोग करते हैं, टीवी चलाते हैं, दूर बैठे हुए टीवी ऑन कर लेते हैं, है ना, दूर बैठे हुए कार चालू कर लेते हैं, रिमोट यूज करते हैं ना, एसी चलाते हैं, जो भी, तो दिखाई देने वाला कोई कनेक्शन तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी पता है कि एनर्जी काम कर रही है जो उस सिस्टम को ऑपरेट कर लेती है, वहां सेंसर लगा हुआ है जो उस एनर्जी को सेंस कर लेता है। तो ऐसे ही जब हम मन से ईश्वर का चिंतन करते हैं तो हमारी विचार तरंगे परमात्मा तक पहुंचती हैं और उनकी शक्तियों को भी हम मन से ग्रहण करते हैं, भले दिखाई नहीं दे रहा। आज टेलीपैथी के भी हम अनुभवी हैं, मनुष्य के मन का मनुष्य के मन से कनेक्शन होता है नहीं होता है, अनुभवी है ना, किसी को हम बहुत याद कर रहे हैं उसी समय उसका फोन आता है तो आप क्या कहते हैं, अरे मैं तो आपको ही याद कर रही थी, तो फिर कैसे आ गया उसका फोन, क्योंकि जो हमने याद किया उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो उस आत्मा तक पहुंचे। तो परमात्मा तक हमारे मन की तरंगे पहुंचती हैं, इसीलिए मन बुद्धि जिसे हम अंतरचक्षु कहते हैं, तीसरा नेत्र भी कहते हैं, उसके द्वारा ही हम आत्मा परमात्मा को अनुभव करते हैं। फिर राजयोग कर्म योग भी है, कर्म करते हुए परमात्मा की याद, उसे हम कर्म योग कहते हैं। तो जो भी हम दैनिक कर्म करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, बहनों का कनेक्शन भोजन बनाने से भी होता है, मेजॉरिटी चाहे वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, घर में खाना तो लगभग बनाते ही हैं, तो कोई भी ये कार्य करते हुए परमात्मा को याद करना, उसे हम कर्म योग कहते हैं। सामान्यतः हम कर्म कैसे करते हैं, सांसारिक यादों में ही कर्म करते हैं ना, कोई भी काम करते हुए, क्योंकि कामों के हम अभ्यस्त होते हैं, जो भी हमारे साधारण दिनचर्या के काम होते हैं उसके लिए कोई हमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी होती, तो मन कुछ और सोच रहा होता है और हाथ अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन उस समय अगर हमने भगवान को याद किया तो वो कर्म का परिणाम बदल जाता है, वो कर्म हमारे सत्कर्म हो जाते हैं और सत्कर्म पदम गुना फल देने वाले होते हैं। सामान्यतः कर्म का नियम है जैसा करोगे वैसा पाओगे, कर्मों की तुलना हम बीज से करते हैं, जैसा बीज हम बोते हैं वैसा हम काटेंगे, एज यू सो सो यू रीप। तो जैसे कई प्रकार के बीज होते हैं, अगर हमने गेहूं मक्का बाजरा बोया तो हमें एक बीज से बहुत सारे बीज, माना एक गेहूं से बहुत गेहूं और एक मक्का से बहुत मक्का हमें मिलेगा, लेकिन एक सीजन मिलेगा। फिर अगर हमें दोबारा चाहिए तो फिर हमें दोबारा फसल बोनी पड़ेगी, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे आम बोया हमने, आम अमरूद सेब नारियल, तो हमने एक बीज डाला तो हमें तुरंत फल नहीं मिलता है, हमें कुछ इंतजार करना पड़ता है, समझो 3 वर्ष 5 वर्ष तक वो फल देते हैं, लेकिन एक बार वो फल देना शुरू करेंगे तो फिर हम ही नहीं खाएंगे, वो हमारी पीढ़ियां भी उस फल को खाती हैं। इसीलिए कहते हैं दादा बोए और पोता खाए। तो जो भी हम परमात्मा की याद में कर्म करते हैं वो इस तरह का फल देने वाले होते हैं कि वो हमें वर्तमान में ही सुख नहीं देते, वर्तमान में ही उसका फल नहीं मिल रहा, लेकिन आने वाले 21 जन्म जो सतयुग त्रेता का समय है, आने वाले 21 जन्मों तक इन कर्मों की प्रारब्ध हमारे साथ होती है। तो इतना पदम गुना फल ये देने वाले हैं। तो इसीलिए कर्म करते हुए परमात्मा को याद करना हमें वर्तमान में भी खुशी देता है, शक्ति देता है और हमारे प्रारब्ध को भी जमा करता है। तो राजयोग कर्म योग है, कर्म करते हुए हम भगवान को याद करते हैं। फिर ये भक्ति योग भी है। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, श्रद्धा और समर्पण, ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण जो भक्तों में हम देखते हैं और वो संबंध से होता है। तो ईश्वर के साथ तो हम संबंध का गायन करते ही हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो परमात्मा तो हमारे सर्व संबंधी हैं, एक में ही हम सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं। दुनिया में हर संबंध अलग अलग है, माता अलग है, पिता अलग है, भाई अलग, बहन अलग, ना? तो वो तो ऑल इन वन है। तो भक्तों ने उन्हें कोई ना कोई संबंध से याद किया, जो भी परमात्मा के परम भक्त हुए, जैसे मीराबाई ने उन्हें पति के रूप में याद किया, प्रहलाद ने उन्हें पिता के रूप में याद किया, ऐसे ही अहिल्या देवी ने उन्हें बच्चे के रूप में याद किया, अर्जुन ने उन्हें सखा के रूप में याद किया। और जब समय आया तो परमात्मा ने, माना ईश्वर ने, समय पर उस संबंध को निभाया भी और उनकी रक्षा भी की। जैसी आवश्यकता हुई उस तरह से उन्होंने उनको सहयोग दिया। तो राजयोग में भी हम परमात्मा को सर्व संबंधों से याद करते हैं। जो संबंध हमें प्रिय है, जो संबंध हमें अच्छा लगता है, वो भगवान से हम अनुभव कर सकते हैं, या जिस समय जिस संबंध की जरूरत है वो भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भक्ति योग भी है, क्योंकि उस भाव से हम भगवान को याद करते हैं। फिर राजयोग संन्यास योग भी है। संन्यास का अर्थ हमारी संस्कृति में क्या है? घर बार छोड़ करके कहीं तीर्थों में, जंगल में जाकर के बैठना और भगवान की याद में अपना जीवन बिताना। तो जब हम संन्यास सुनते हैं तो फिर हमें भय होता है। क्या भय होता है? कि कहीं हम ज्ञान की तरफ आएंगे तो हमको सब कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते, हम पाना चाहते हैं। इंसान का स्वभाव क्या है? छोड़ना नहीं है, पाना है। कुछ मिल रहा है तो ठीक है। तो राजयोग में परमात्मा हमें ये संन्यास नहीं कराते कि हम घर गृहस्थ में हैं, हमारी जिम्मेवारियां हैं, हमारे संबंध हैं, हमारे कर्तव्य हैं, ये सब हमें नहीं छोड़ना है। क्या छोड़ना है? संन्यास जरूर करना है, लेकिन क्या संन्यास करना है? बुराइयों का संन्यास, विकारों का संन्यास। जो विकार हमें दुख देते हैं, आज दो दिन से आप सुन रहे हैं कॉन्फ्रेंस में, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिनसे हम दुखी रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विष की तरह हमारी जिंदगी में, इन्हें हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन पता नहीं कैसे छोड़ें। तो भगवान हमें वो विधि बताते हैं। तो घर गृहस्थ में, संसार में रहते हुए इन बुराइयों का संन्यास करना उस संन्यास से भी महान संन्यास है। कोई घर बार छोड़कर गया और बुराई नहीं छोड़ पाए तो फिर क्या होता है? उस संन्यास को भी वो बदनाम करते हैं। और आज हम देखते हैं कि कई महात्मा जेल में हैं। क्यों जेल में हैं? क्योंकि विकार नहीं छोड़ सके। तो परमात्मा हमें ये संन्यास सिखाते हैं, घर बार छोड़ना नहीं सिखाते। राजयोग घर गृहस्थ में रहते हुए ही हमें परमात्मा को याद करना है और अपने जीवन को, कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। फिर राजयोग समत्व योग भी है। समत्व योग यानी कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमारा मन शांत है, स्थिर है, संतुलित है। जीवन में तो समस्याएं आती रहती हैं, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, इससे हमारा जीवन गुजरता है। कभी हम सुखी हैं, कभी हम दुखी हैं, कभी हम सफल हैं, कभी हम असफल भी हैं, कभी हमारी तारीफ हो रही है तो कभी हमारी निंदा भी होती है। तो ये स्थितियां मनुष्य के मन को विचलित करने वाली होती हैं। कोई बहुत सफल है, सुखी है, तो उसको अहंकार आ सकता है, और कोई दुखी है और असफल होता है या हानि हो जाती है उसको जीवन में, तो वो बहुत निराश हताश हो सकता है। तो ये स्थितियों में कई बार मनुष्य गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन एक योगी हर स्थिति में स्थिर चित रहता है, क्योंकि उसे पता है कि हर स्थिति परिवर्तनशील है। ना सुख सदा रहने वाला है और ना ही दुख सदा रहने वाला है। तो राजयोग का ये अर्थ नहीं है कि हमें कोई सिद्धियां मिलने लगेंगी। कई बार ऐसे भी है, लोग सोचते हैं क्या चमत्कार हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे भारत में संत महात्मा चमत्कार दिखाते हैं। वो कोई मंत्र जाप करेंगे, जिस वस्तु की इच्छा करेंगे वो उनके सामने हाजिर हो जाएगी, या वो किसी को भभूत देंगे और कहेंगे इससे आपका रोग दूर हो जाएगा, इससे आपका कष्ट निवारण हो जाएगा, जो भी वो कुछ ऐसे ऐसा बताएंगे, और वो हो भी जाता है कई बार। क्यों? क्योंकि वो लेने वाले की आस्था काम करती है। कोई भभूत से रोग ठीक हो रहा है या मंत्र से ठीक हो रहा है, नहीं, आस्था से वो ठीक हो रहा है, लेकिन उससे उनको नाम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, पर उससे किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होता। और इसीलिए जो सच्चे संत हुए उन्होंने ऐसी सिद्धियों को महत्व नहीं दिया, जो अल्पकाल की सिद्धियां हैं। स्वामी राम तीर्थ के जीवन की घटना है। एक बार एक सन्यासी उनके पास आए और अपनी सिद्धियों का वर्णन करने लगे कि आपके आश्रम के पास ही जो नदी बहती है इसको मैं चलकर पार कर सकता हूँ, मैं आसमान में ऊपर उठ सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा, आपको कितने साल लगे? कहा, कुछ साल लगे हैं। तो उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। थोड़े समय के बाद उनका दूध वाला आया, तो वो नदी पार करके आता था। तो उन्होंने सन्यासी के सामने अपने दूध वाले से पूछा, तुमने कितने पैसे में नदी पार की? तो उसने कहा, एक पैसे में। उस जमाने में एक पैसा दो पैसा चलता था। तो फिर उन्होंने सन्यासी को कहा कि देखो, जो काम मेरा दूध वाला एक पैसे में कर सकता है, उस काम को करने में आपने इतने साल लगा दिए, आपने क्यों सन्यास किया है? तो उन्होंने कहा, भगवत प्राप्ति के लिए। तो बोला, यही आपने साधना की होती तो आप भगवान तक पहुंचे होते। तो जो सच्चे संत हुए उन्होंने ऐसी सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। तो राजयोग में भी हम चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, लेकिन हमारा जीवन ही चमत्कारिक बन जाए। तो योग से हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं, हमारा संस्कार परिवर्तन होता है, हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। फिर राजयोग हठ योग भी है। हठ योग में क्या करते हैं भक्त? भगवान से हट करते हैं। हट माना कोई ना कोई ऐसी भगवान के सामने जिद रखते हैं, जैसे अगर मुझे दर्शन नहीं मिले तो भले मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा या करूंगी, या मीलों चलकर जाएंगे नंगे पैर दर्शन करने के लिए कि मेरी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। ऐसे ऐसे हम देखते हैं ना, कई कई भक्त ऐसा ऐसा करते हैं, अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं कि जो वो चाहते हैं भगवान से वो उन्हें मिल जाए उसके लिए। ऐसी कठिन कठिन साधनाएं करते, पर राजयोग में हम इस तरह का अर्थ नहीं करते। हम परमात्मा से दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, वो प्रतिज्ञा से अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। जैसे हम व्रत रखते हैं, तो हमने व्रत रखा तो फिर उस दिन कोई हमारे सामने बहुत स्वादिष्ट भोजन की थाली परोस दे तो हम क्या कहते हैं, आज नहीं, आज मेरा व्रत है। हम व्रत नहीं तोड़ते अपना, चाहे कितना भी मेरा मन पसंद भोजन मेरे सामने आ जाए। तो यहां हमने व्रत रखा, आज सारा दिन कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो फिर बहुत सारी बातें आएंगी जब मुझे गुस्सा आ सकता है, कोई मेरी बात नहीं मानेगा, कोई गलती करेगा, कोई मेरे से झूठ बोलेगा, या कोई मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, मेरा हमारा अपमान कर देते हैं। गुस्सा आने के कारण क्या होते हैं, यही होते हैं। तो दिन भर में कई बार ऐसी बातें हो जाएंगी जब ये सब होगा और फिर भी मेरा व्रत क्या है, मेरा व्रत क्या है, कोई कुछ भी करे मुझे गुस्सा नहीं करना है, नहीं करना है माना नहीं करना है, आज मेरा व्रत है। और एक दिन अगर हमने अपनी इस कमजोरी को जीत लिया तो फिर आगे के लिए हमें अपने पर विश्वास हो जाता है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम परिवर्तन लाते हैं। तो राजयोग हमें सभी योगों का फल देने वाला है। अब हम सभी भगवान को याद तो करते हैं, हमारी अपनी अपनी विधियां हैं, जैसे कल भी हमने बात की। तो हम कैसे याद करते हैं, भक्ति करते हैं हम सभी, तो कैसे भक्ति करते हैं, हमारे घर में एक पूजा स्थान बनाया होता है, किसी का बड़ा घर है तो एक पूजा घर भी बना लेते हैं, और उसमें हमने अपने जो भी हमारे इष्ट हैं उनकी मूर्तियां चित्र हम रख देते हैं, और रोज हम उसमें दिया करते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं, और जो भी हमारी भावना है, आरती करना या मंत्र करना या माला करना, हमारी जो भी विधि है वो स्तुति करना, वो हम करते हैं। और हमारी भावना क्या होती है, सब कुछ हमारे जीवन में भगवान की कृपा से ठीक ठाक चलता रहे। कोई खास दिन होंगे तो हम मंदिरों में चले जाते हैं दर्शन करने के लिए, और जो खास दिन होते हैं उन दिनों मंदिरों में बहुत भीड़ होती है क्योंकि सभी आते हैं, और फिर कैसे दर्शन होते हैं, धक्के वाले लाइनों में अंदर जाते हैं और एक मिनट भी हम मूर्ति के सामने ठीक से खड़े नहीं हो पाते, और उतनी देर में भी हम आंखें बंद कर लेते हैं, तो कौन किसका दर्शन कर रहा है, हम दर्शन कर रहे हैं या भगवान हमारा दर्शन कर रहा है, और फिर हमें कहते हैं आगे चलो आगे चलो। तो ऐसे हम भगवान को याद करते हैं। कहने का भाव यह है कि हमारा संबंध ईश्वर के साथ नहीं हो पाता है। जैसे हम माला भी फेरते हैं तो माला के लिए कबीरदास जी ने क्या कहा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला कैसे फेरी जाती है, मन के घुमाते हैं और राम राम राम, शिव शिव शिव, जो भी हरे कृष्ण, जो भी मेरे इष्ट हैं उसका मैंने नाम जपना शुरू किया, तो थोड़ा शुरू में तो ठीक है लगा ध्यान, फिर बाद में हाथ में सिर्फ मन के ही घूमते हैं और मन भी घूमना शुरू कर देता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये कोई मन के घुमाने की बात नहीं है, क्या घुमाना है, मन को घुमाना है, मन को ईश्वर में लगाना है। और क्या करते हैं, मंत्र जपते हैं, माना हम कैसे भक्ति करते हैं। तो शिव बाबा ने समझाया कि ये कैसे हमारा ज्ञान है, तो हम मंत्र जपते हैं क्योंकि गुरु हमें मंत्र देते हैं, हमेशा कोई ना कोई गुरु हम कर लेते हैं, या कोई जीवन में कष्ट है संकट है तो हम पूछते हैं उपाय, तो वो हमें मंत्र बता देते हैं, ये मंत्र का जाप करो, इतने बार जाप करो, 108 बार, 1008 बार, 1,00,000 बार, जितनी भी बार कहते हैं। अब जो भी मंत्र हैं वो संस्कृत में होते हैं और हमें उनके अर्थ पता नहीं होते, तो हमारे भाव भगवान के साथ जुड़ते ही नहीं। अब गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः सत्सवितर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कितनों को मालूम है इसका अर्थ? सिर्फ दो लोगों ने हाथ उठाया। तो हमें मंत्र का अर्थ ही नहीं मालूम है। तो अब मैं मंत्र जप रही हूं तो क्या कर रही हूं? सिर्फ मैकेनिकली उसे मैं बोल रही हूं। भगवान से हम जुड़ पाए क्या? और योग कहां होता है? गिनती में। 108 बार हुआ कि नहीं हुआ, 1008 बार हुआ कि नहीं हुआ। और यहां भी ऐसा ही होता है। अब कुछ भाव नहीं बन रहा है तो शुरू में तो मंत्र बोला तो शांति मिली, क्योंकि दुनिया की बातों से मन निकलकर मंत्र में आ गया तो मन को थोड़ा शांति मिलती है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है? वही 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 हम जप रहे हैं तो मन कहता है मुख तुम जपते रहो, मैं अपना काम करता हूं। तो ऐसे हम मंत्र जपते हैं। और फिर मंत्र जो है वो संस्कृत शब्द है, तो मंत्र का अर्थ होता है सलाह देना। जैसे मंत्री माना सलाहकार, मंत्रणा माना सलाह, तो मंत्र का मतलब है मन को सलाह देना। वास्तव में हम अपने मन को सलाह दें, मन को बताएं कि मन तुझे क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। तो राजयोग में तो हर एक विचार ही एक मंत्र की तरह है। हम मन को क्या विचार देते हैं? मैं आत्मा हूं, मैंने अपने आप को रियलाइज कराया कि मैं कौन हूं। तो मैं ये शरीर हूं नहीं, मैं कौन हूं? ये शरीर तो मैंने धारण किया है, मैं तो आत्मा हूं, शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा पवित्र आत्मा हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। तो मैं अपने मन को सलाह दे रही हूं ना कि मेरा मन, अब मैं क्या हूं, मेरा सत्य स्वरूप क्या है और मेरे पिता कौन है और उनसे मेरा संबंध। तो ये सब हम मन को मंत्र देते हैं। अब हम जपते हैं ओम नमः शिवाय। तो हमने कहा ओम नमः शिवाय माना मैं शिव को नमन करती हूं। इसका अर्थ होता है मैं शिव को नमन करती हूं। तो मुझे यही पता नहीं मैं कौन हूं और मुझे ये भी पता नहीं शिव कौन है, कहां रहते हैं, तो क्या मेरा नमन उन तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। तो राजयोग में हम जैसे कहा कि सही ज्ञान से हम परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। तो ये अंतर है। फिर जो विधि हम अपनाते हैं मनुष्यों को याद करने के लिए, जैसे आपको बताया एक बच्चा अपने पिता को याद करता है तो क्या उसे मंत्र जपना पड़ता है? हाँ, या एक पत्नी अपने पति को याद करती है, या एक भाई बहन को याद, या हम किसी दोस्त को याद करते हैं तो क्या हमें कोई ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती है? नेचुरल याद होती है। और क्यों याद आती है? चार आधार है उसके। चार आधार कौन से हैं? पहचान होनी चाहिए, बिना पहचान के हम किसी को याद नहीं कर सकते। फिर दूसरा संबंध होना चाहिए, संबंध होगा तो याद होगी। फिर तीसरा स्नेह होना चाहिए और चौथा प्राप्ति होनी चाहिए। ये चार बातें जहां हैं वहां याद करने की मेहनत नहीं होती। तो परमात्मा की पहचान हुई आपको? हुई सबको परमात्मा की पहचान? कौन है शिव परमात्मा? कौन है जी? नाम क्या है? शिव बाबा। तो हमने अब परमात्मा को पहचान लिया। जैसे एक कुमार कुमारी होते हैं, शादी की उम्र में हैं, उनकी शादी तय होने वाली है, तय हुई नहीं है तो बुद्धि भटकती है, कौन होगा कौन होगा, हाँ मेरा भविष्य साथी कौन होगा। और जब संबंध तय हो जाता है तो पता चल गया कि ये भविष्य साथी है, फिर बुद्धि भटकती है, फिर तो याद टिक जाती है, है ना। फिर याद करेंगे तो किसको करेंगे, उसी को करेंगे जिससे संबंध तय हो गया। तो यहां भी अब तक भगवान की पहचान नहीं थी, तो कभी इसको कभी उसको, माना मन भटकता। जैसे कहा हम क्या कहते हैं, भगवान की याद में मन लगता नहीं, मन भटकता है क्योंकि पता ही नहीं था। अब परमात्मा का सही परिचय हमें मिल गया, वो कौन है कहाँ है, तो अब मन भटकने की बात नहीं, हम सहज ही उसमें अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। फिर संबंध, तो संबंध और स्नेह के आधार पर तीन प्रकार की याद होती है। एक होते हैं हम याद करते हैं, दूसरा हमें याद आती है, और तीसरा हमें याद सताती है। याद करते हैं हम स्वार्थ से, मेरे को किसी से कोई काम है तो हम सोचेंगे वो मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, या हमारे घर में कोई अवसर है तो हम याद करते हैं इसको भी बुलाना है, इसको भी बुलाना है, पूरी लिस्ट बनाएंगे कोई रह ना जाए, अगर ये रह गए तो फिर कहीं नाराज ना हो जाए, तो याद करते हैं, ऐसे हम याद करते हैं। याद आती है किसकी, जिससे प्यार है। कईयों के साथ तो इतना प्यार होता है कि याद भूले कैसे, मुश्किल होती है कि इसको भूलें कैसे, है ना। तो ये है याद आना। फिर याद सताती है, सताने वाली याद माना दुख देने वाली याद, किसी की याद हमें दुख देती है, माना उसको याद करते ही मन दुखी हो जाता है। किसकी याद दुख देती है, या तो व्यक्ति सदा के लिए चला गया, यानी किसी की मृत्यु हो गई, हमारा प्रिय है मृत्यु हो गई, पता है ये कभी आने वाला नहीं, तो फिर उसको याद करके मन दुखी होता है, याद करते ही रोना शुरू कर देते हैं, है ना। और दूसरा सताने वाली याद, कोई हमको धोखा दे देता है और हमसे अलग हो जाता है मानो, तो उसकी भी याद दुख देती है। बेटा है विदेश में पढ़ रहा है और माँ को पता चलता है वो बीमार है, अब विदेश तो नहीं जा सकती है, तो दुखी होती रहेगी कि अब उसने डॉक्टर को दिखाया है नहीं दिखाया, दवाई ले रहा है नहीं ले रहा, ठीक से खा रहा है नहीं खा रहा है। तो ये है सताने वाली याद है। तो ये तीन प्रकार की याद में परमात्मा की याद कौन सी होनी चाहिए, हम याद करते हैं, उसकी याद आती है, और याद सताती है। जो समझते हैं हम याद करते हैं वो हाथ उठाएं। याद करते हैं, अच्छा अच्छा, जो समझते हैं याद आती है, अच्छा मेजॉरिटी उठा रहे हैं, और जो समझते हैं याद सताती है, अच्छा वो भी कुछ है, कम है। अब हम आपको बताएंगे भगवान की याद कौन सी होनी चाहिए। तो परमात्मा की याद हमें सताने वाली याद नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान की याद हमें कभी दुख नहीं देती। शिव बाबा तो सुख का दाता है, दुख हरता सुख करता है, शांति का सागर है, दया करुणा का सागर है, तो उसको हम याद करते हैं तो मन सुखी होता है, मन शांत होता है, मन आनंद में आ जाता है। तो इसीलिए, और वो हमसे कभी अलग होता ही नहीं, हम अलग होते हैं, हम जब भी भगवान को याद करेंगे वो हमारे लिए हाजिर है, वो तो अनादि शक्ति है। परमात्मा की कभी मृत्यु होती है क्या? तो इसीलिए उसकी याद कभी भी सताने वाली याद नहीं हो सकती। परमात्मा की याद आनी चाहिए, जो आपने मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, स्वतः ही उसकी याद आनी चाहिए। लेकिन कब आएगी? जब इतना हमें परमात्मा से स्नेह और संबंध होगा। अब हम आपसे एक एक्सरसाइज कराते हैं, है ना, उससे पता चल जाएगा आपको जो सबसे प्रिय है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है जो सबसे क्लोज होता है, तो आप उसका नाम अपने मन में सोचें कि ऐसा कौन है जो मुझे सबसे प्यारा है। कोई भी हो सकता है, बेटा है, दोस्त है, पति है, कोई भी माना एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, वो कौन है। फिर नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट प्यारा कौन है, नंबर टू। और फिर उसके भी नेक्स्ट नंबर तीन कौन है, सोच लिया सबने। अच्छा, अब ये तीनों में किसी के भी, इन तीनों में भगवान का नाम आया, जिनके आया वो हाथ उठाए। अच्छा, कुछ का आया, तो इसका मतलब इतना भगवान से हमारा संबंध है और बाकी दूर का संबंध है। तो क्लियर हो गया ना कि भगवान से हमारा कितना प्यार है या कितना संबंध है। तो हम आज वर्तमान समय में परमात्मा को याद करते हैं, याद आती है नहीं, याद करते हैं स्वार्थ से। आज एक स्टूडेंट है, उसको एग्जाम में पास होना है, भगवान को याद करता है, भगवान मुझे पास कर देना, या पास नहीं तो फिर जो भी उसको परसेंटेज या उसकी आशा है, रैंक की आशा है, वो मुझे आ जाए। अच्छा, वो हो गया, वो पास हो गया, तो अब कहेगा भगवान मेरी अच्छी नौकरी लग जाए। फिर अच्छी नौकरी भी लग गई तो अब मेरी अच्छे घर में शादी हो जाए। अच्छा चलो, शादी भी हो गई, अब एक अच्छा सा घर हो जाए। अच्छा चलो, घर भी हो गया, अब अगर बेटा नहीं है तो एक बेटा हो जाए ना। कैसे हम भगवान से मांगते रहते हैं, और फिर सिर्फ मांगते नहीं, सौदा भी करते हैं। अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो हम कितने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, चढ़ाते नहीं चढ़ाते। अगर पूरी हुई तो भगवान को प्रसाद मिलेगा, और अगर पूरी नहीं हुई तो हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मनुष्य जैसा। हम सोचते हैं इंसान बिना लेन देन के कुछ नहीं करता है, तो भगवान भी बिना लेन देन के करने वाला नहीं है, तो हम उसके साथ पहले ही सौदा कर लेते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। बिना मांगे मोती भी मिलते हैं और मांगने से भीख भी नहीं मिलती, और ये हम सब अनुभवी हैं अपने जीवन में। आपके सामने भिखारी आता है, आपको कैसा लगता है, कितना अच्छा लगता है भीख मांगने वाला, अच्छा लगता है। हम क्या देखते हैं कि ये भीख मांगना चाहिए इसको, नहीं मांगना चाहिए। अगर लगता है नहीं मांगना चाहिए तो उसको सिखा देते हैं भीख क्यों मांगते हो। और अगर हमें लगता है दया का पात्र है तो फिर हम उसे कितनी भीख देते हैं, सबसे छोटा नोट मेरे पर्स में जो होता है वो निकाल करके हम उनको देते हैं। अब भगवान के सामने हम खड़े हैं, मांग रहे हैं, तो भगवान को हम अच्छे लगेंगे मांगते हुए। वो भी हमें जज करेगा या नहीं करेगा कि मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, है ना। और मेरे कर्मों के अनुसार अगर मुझे मिलना चाहिए तो मिलेगा, और नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ राजयोग में हम परमात्मा से मांगते नहीं हैं। आप दो दिन से अभ्यास कर रहे हैं ना, हमने ऐसी भाषा बोली, भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, तो ये भाषा का हम प्रयोग ही नहीं करते, क्योंकि हमें मांगने की जरूरत नहीं। परमात्मा के हम बच्चे हैं, और बच्चों का अधिकार होता है, उनके लिए माँ बाप खुद करते हैं। बच्चों को मांगना पड़ता है क्या, मुझे ऐसा घर दो, मुझे ये कपड़े दो, मुझे ये भोजन दो, मेरी पढ़ाई का प्रबंध करो, ये सब मांगते हैं क्या, कौन कर रहा होता है, चिंता कौन कर रहा होता है, खुद माता पिता ही कर रहे होते हैं ना। तो परमात्मा हमारा माता पिता है, और उस संबंध से जब हम उसे याद करते हैं तो हमारी सब आवश्यकताएं खुद ही पूरी होती हैं, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। तो हम परमात्मा को संबंध से और स्नेह से याद करते हैं, और उसमें ही प्राप्ति समाई हुई है, और संबंध के आधार पर संबंध के आधार पर जो समीपता होती है वो समानता के आधार पर होती है। किसी के भी समीप हम कब होते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ हमारी समानता है, या तो हमारे विचार मिलते हैं तभी फ्रेंडशिप होगी, या प्रोफेशन मिलते हैं। मानो दो डॉक्टर मिलेंगे तो आपस में बहुत जल्दी उनके समीपता हो जाएगी, या दो बच्चे आपस में मिलेंगे, आयु की समानता है तो आपस में बहुत जल्दी उनकी दोस्ती हो जाएगी। तो परमात्मा के साथ भी हमारी कुछ समानताएं हैं, और उन समानताओं को अनुभव करते हुए हम वो समीपता का अनुभव कर लेते हैं, और उससे वो संबंध हमारे लिए सहज हो जाता है। तो पहली समानता है परमात्मा के साथ हमारी स्वरूप की समानता। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है और आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो हम परमात्मा को आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर याद करते हैं। राजयोग अभ्यास में जो पहला चिंतन है, जो पहला चरण है, वो आत्मचिंतन है, यानी मेरा स्वरूप परमात्मा के स्वरूप के समान हो। वो निराकार हैं, शिव बाबा तो सदा ही निराकार हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, लेकिन मुझ आत्मा ने इस देह को धारण किया हुआ है, तो ये देह रूपी आवरण है हमारे ऊपर। अगर हम दो तारों को जोड़ते हैं तो हमें दोनों तारों का रबड़ हटाना होता है। तार से तार को हम जोड़ेंगे तो करंट फ्लो होगी। अगर आप रबड़ से जोड़ देंगे तो करंट फ्लो होगी, क्योंकि वो इंसुलेटर है। तो ऐसे ही शिव बाबा तो निराकार हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये जो देह रूपी आवरण है, इसके कॉन्शियसनेस यानी इसके भान से हमें मुक्त होना होता है, तब मेरी फ्रिक्वेंसी भगवान की फ्रिक्वेंसी के समान होती है। मानो हमें रेडियो सुनना है, एफएम रेडियो सुनते हैं आजकल लोग, तो एफएम रेडियो सुनने के लिए मुझे ट्रांसमिशन की फ्रिक्वेंसी पर अपने सेट को लाना पड़ेगा। अगर सेम फ्रिक्वेंसी है तो हम वो स्टेशन सुन पाएंगे, और अगर नहीं है तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, रेडियो स्टेशन सुनाई देगा मुझे? नहीं सुनाई देगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही। अगर मुझे टीवी चैनल भी देखना है तो वो टीवी चैनल भी मुझे ट्यून करना पड़ता है। तो ऐसे ही परमात्मा के साथ मेरी ट्यूनिंग कब होगी? जब मेरे मन की स्थिति उनके स्थिति के समान हो। तो जैसे वो निराकार है, मेरा मन भी उस निराकारी स्थिति में हो, आत्मिक स्थिति में हो, वो लाइट बिंदु की स्थिति जो हम यहाँ अनुभव करते हैं राजयोग में, उस स्थिति में हम मन को ले जाते हैं। तो जब हम आत्मा समझते हैं तो परमात्मा हमें याद आता है। जैसे मानो आप टीचर हैं तो टीचर समझेंगे तो स्टूडेंट याद आएंगे, टीचर का संबंध स्टूडेंट के साथ है। माँ समझेंगे तो बच्चे याद आएंगे, और अगर बिजनेसमैन है कोई तो वो ग्राहक को याद करेगा, कोई डॉक्टर है तो वो पेशेंट को याद करेगा, तो जिसका जिसके साथ संबंध है उसको वो याद आएगा। तो ऐसे ही आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। तो जब हम आत्मा समझते हैं तो हमें परमात्मा याद आते हैं। और फिर हमारी दूसरी समानता है ईश्वर के साथ धाम की समानता, घर की समानता। शिव बाबा परमधाम निवासी हैं तो हम आत्माएं भी परमधाम के रहने वाले हैं। वैसे भी बच्चों और पिता का घर एक ही होता है, तो इससे हमें समीपता का अनुभव होता है। मानो जैसे आप यहाँ आए, आप जहां से भी आए हैं यहाँ पर कोई भाई बहने आपको वहां के मिल जाते हैं, उस शहर के ही नहीं उसी सोसाइटी के जहां आप रहते हैं, तो कैसा अनुभव होगा उनके साथ आपको? अरे ये तो मेरे अपने ही हैं, भले हम पहले नहीं जानते थे, आज ही हमने उनसे परिचय किया, लेकिन कितना क्लोज फील करेंगे। जितना जल्दी उनसे आपको अपनापन हो जाएगा उतना दूसरों से नहीं होगा, क्योंकि स्थान की समानता है। तो जब हमें ये रियलाइज होता है कि हम भी परमधाम के रहने वाले हैं, हाँ, और उसी धाम में शिव बाबा भी रहते हैं तो हम उनको बहुत प्यार से याद करते हैं, और फिर जो जहां रहता है वहीं हमारा मन जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके माता पिता दिल्ली में रहते हैं और यहां बैठे हुए किसी कारण से आप उन्हें याद करते हैं तो मन कहां जाएगा? मन कहां जाएगा? दिल्ली जाएगा, है ना? या आपके कोई फ्रेंड अमेरिका में रहते हैं और आप उसे याद करते हैं तो मन कहां ट्रेवल करेगा? अमेरिका में ट्रेवल करेगा। तो शिव बाबा परम धाम में रहते हैं और यहां बैठे हुए हम शिव बाबा को याद करते हैं तो मन कहां जाएगा? कहां जाएगा? हाँ, इसीलिए हम मन को कहां ले जाते हैं? राजयोग में, परम धाम में ले जाते हैं। तो अभी तक आप जो कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है वो आपको समझ में आ रहा है अभी, कि हम राजयोग में जो चिंतन कर रहे हैं उस चिंतन का आधार क्या है। और वैसे भी किसी से भी मिलना है तो तीन तरीके होते हैं, या तो आप उनके यहां चले जाएं, या वो आपके यहां आ जाएं, या दोनों स्थान छोड़ के कोई तीसरा स्थान हम निश्चित करें। तो हम शिव बाबा को यहां तो बुलाएंगे तो क्या होने वाला है? हम याद कर सकते हैं यहां पर, लेकिन हमारा मन दुनिया की बातों में इतना उलझा हुआ होता है कि हम उसे याद कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम मन को परम धाम में ले जाते हैं तो इस संसार से हम न्यारे हो गए, संसार से पार हो गए, तो फिर मन शांत होता है और मन परमात्मा में एकाग्र होना सहज होता है। और कोई तीसरा स्थान, जैसे कहा मानो हमने, हम सेंटर पर आए, हम यहां आए, फर्क पड़ता है ना? तो ये तीनों प्रकार से हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि हम परम धाम में परमात्मा को याद करें। फिर तीसरी समानता हमारी ईश्वर के साथ है, गुणों की समानता। जिन गुणों में परमात्मा सागर के समान है, उन्हीं गुणों में आत्मा स्वरूप है। वो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, सर्वशक्तिवान है, रूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो हम उनके गुणों का स्मरण करते हुए उन्हें याद, और ये काम हमने भक्ति में भी किया है, करते हैं हम। हम कैसे भगवान को याद? ऐसे ही याद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्तन माना उनकी कीर्ति गाना। लेकिन हम जोर जोर से बोल के भक्ति में हम भजन करते हैं, मुख से बोलते हैं, बाजा बजाते हैं, झांझ बजाते हैं, मंजीरे बजाते हैं, जो भी साजों और बाजों का हम प्रयोग करते हैं और हम वो अनुभव करते हैं, तो शांति तो मिलती है, खुशी भी मिलती है, लेकिन हमारी बहिर्मुखी हो जाती है और इसीलिए जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। भक्ति करते हुए हम वहीं के वहीं रहते हैं, लेकिन राजयोग में हम वही ईश्वर के गुणों का स्मरण कर रहे हैं, एक मन ही मन, और हमारी शक्तियां अंतर्मुखी होती हैं, तो उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, यानी हम उन गुणों का स्वरूप बनते हैं। जिनका हम चिंतन कर रहे हैं वो गुण हमारे जीवन में उतरने लगते हैं और हम उसे महसूस भी करते हैं, तो ये अंतर है। फिर कई कहते हैं भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, वो हम भगवान से नहीं मांगते लेकिन हम उनसे सुख शांति मांगते हैं। भगवान मेरे जीवन में सदा सुख शांति बनी रहे, तो मांगना चाहिए सुख शांति? क्या कहेंगे? मांगना चाहिए? सुख शांति मांगने की जरूरत है हमको? नहीं, क्योंकि वो सुख शांति का सागर है, हम उसके पास जाते हैं तो वो अपने आप सुख शांति मिलती है। आप आग के पास बैठे हैं तो आपको गर्मी मांगनी पड़ती है, हम सागर के किनारे जाते हैं तो हमें हवा मांगनी पड़ती है, क्योंकि वो उसका गुण है, वो दे ही रहा है। तो जब मन ईश्वर के संग में है तो उसका रंग हमें लगता है, यानी अपने आप ही वो शांति, वो सुख, वो शक्ति का अनुभव हमारा मन करने लगता है। लेकिन मन को परमात्मा के संग में जरूर हमें ले जाना होता है, उसके समीप है, उसके साथ है, तो अपने आप ही वो सुख शांति हमारे में उतरने लगती है, वो भी हमें मांगने की जरूरत नहीं है। अब जब हम योग शुरू करते हैं तो मन की किन अवस्थाओं से हम गुजरते हैं। कल भी एक दो बहनें हमसे बात कर रही थी ना कि बस योग करना शुरू किया और मन की हालत, हमारी ऐसी हो जाती है कि कहाँ का कहाँ मन चला गया। और तो ऐसे ही होगा, हमने चिंतन शुरू किया, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, और थॉट आएगा आज हमें साइट सीन जाना है, अब टाइम पर बस मिल जाए, बस फटाफट नाश्ता करके सब आ जाए, तो क्या हुआ? फिर सोचेंगे अरे अभी तो हम योग करने बैठे हैं, ये सब बाद में सोचेंगे, अभी योग कर लो। फिर एक दो थॉट आया और फिर कहाँ पहुंच गए, किसकी याद आ गई, तो हम संघर्ष करते हैं, है ना, एक युद्ध में चला जाता है हमारा मन। और कई बार हम बैठे 10 मिनट, यहाँ तो आपसे सिर्फ 5 मिनट ही कराते हैं, पर समझो हमने योग किया 10 मिनट, वो 10 मिनट मन में इतनी उथल पुथल होती रही कि सिर भारी हो गया, क्योंकि कई बार हम नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं ना। स्पिरिचुअल थॉट्स करना तो दूर, वो जैसे मैंने कहा कहाँ कहाँ मन गया, तो किसी ने मेरा क्या बुरा किया और उसके साथ अब मुझे क्या करना है, उसमें चले जाते हैं। फिर कहते हैं अरे सिर भारी हो गया, अभी ये कैसे टाइम वेस्ट कर दिया मैंने इतना, इससे तो हम कुछ काम करते तो ज्यादा अच्छा था। तो ये शुरू शुरू में हमें मुश्किल लगता है। कोई भी काम जिंदगी में हम शुरू करते हैं तो आसान होता है क्या? कोई भी नया काम क्या होता है? मुश्किल होता है। अगर हमने ड्राइविंग सीखी मानो तो एक दिन में ड्राइविंग आ जाती है हमको, कितना टाइम लगता है? जिस भी क्षेत्र में हम हैं, चाहे आज हम टीचर बने, चाहे हम डॉक्टर बने, या जो भी हम जिस भी फील्ड में काम करते हैं, एक दिन में सीख लिया क्या हमने? सालों लगे ना। और उसमें परफेक्ट होने में कितना समय लगा? और भी अधिक समय लगा। तो ये तो मन है ना, मन सूक्ष्म है। जब संसार के भौतिक कार्यों में भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो अपने सूक्ष्म मन को एक सही दिशा देने में, ईश्वर की ओर ले जाने में, एक ही दिन में हो जाएगा? एक ही बार में हो जाएगा? हाँ, हम क्या सोचते हैं, एक ही बार में मेरा मन भगवान में लग जाना चाहिए। तो इसीलिए हमें धीरज रखना होता है। हो सकता है एक बार, दो बार, 8 बार, 10 बार आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा। हम चिंतन करते हैं, मिक्स करते हैं, एक योग का विचार होता है तो एक दुनिया का विचार होता है, ऐसे ऐसे हमारे विचार चलते हैं, और धीरे 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 फिर हम ज्यादा स्पिरिचुअल थॉट्स में अपने मन को रख पाते हैं, तब हमें थोड़ा अनुभव होता है। पर एक बार वो अनुभव हो गया, फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर अपने आप आपका मन टाइम ढूंढेगा कि मुझे समय मिले और मैं योग करूं और मुझे वो अनुभव हो। कोई दीवार हम तोड़ते हैं, 100 हथौड़े में वो दीवार टूटी, तो क्या पहले के 99 हथौड़े बेकार गए? क्या कहेंगे? हर हथौड़े ने उस दीवार को कमजोर किया और 100वें हथौड़े में वो दीवार टूटी, ऐसे ही ना। तो हमारा हर प्रयास, जब भी हम योग में बैठ रहे हैं, वो हमें सफलता की ओर ले जाता है। इसीलिए हमें समय जरूर निकालना है और रोज हम योग करें, ये हमें लक्ष्य रखना है, चाहे हमारा योग लगता है या नहीं लगता, चाहे वो हम पूरी तरह मन को एकाग्र कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो ये है प्रारंभिक अवस्था, जब हमारे विचार थोड़ा इधर उधर जाते हैं। और दूसरा योग का दूसरा चरण है, हम परमात्मा के गुणों का स्मरण करते हैं, मन को परम धाम में ले जाते हैं, और फिर हम ईश्वर से संबंध का अनुभव करते हैं। जो भी संबंध से वो भाव हम व्यक्त करना चाहते हैं, वो परमात्मा के सामने हम कह सकते हैं। और कोई मेरे मन में बोझ है, कोई भय है, या कोई चिंता है, उदासी है, वो भी अगर हम उनके सामने अपने मन की बात रखना चाहते हैं, तो वो भी हम परमात्मा को कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा, हम सर्व संबंधों से उसे याद करते हैं, तो जिस भी संबंध से हम ईश्वर से बातचीत को हम रूह रिहान कहते हैं, क्योंकि ये रूह से रूह की बात है, मनुष्य से मनुष्य की बात नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा रूप में हूं और परमात्मा भी कौन है, सुप्रीम आत्मा, सुप्रीम सोल है, तो ये सोल की सोल से कन्वर्सेशन है, इसीलिए रूह रिहान कहा इसको। तो ये परमात्मा से हम वो बातचीत करते हैं और इस तरह से सर्व संबंध अनुभव करते हुए फिर हम मन को एकाग्रता की स्थिति में अनुभव करते, धीरे धीरे मन परमात्मा में एकाग्र हो जाता है और उनके सिवाय फिर हमें कुछ भी और याद नहीं रहता, जैसे कि मन उस स्थिति में है, कोई चिंतन नहीं है, तो हम अनुभव करते हैं। और अनुभूति ऐसी होती है कि अगर हम दुख में थे, जब हम योग में बैठे, कोई बात को लेकर के हमारा मन उदास था, लेकिन जब हम अनुभूति की स्थिति में चले जाते हैं तो मन खुशी में आ जाता है, मन आनंद में आ जाता है। कोई बात को लेकर मेरा मन अशांत था, लेकिन अनुभूति हुई तो मन अशांति से शांति में आ जाता है, मन दुख से सुख की स्थिति में आ जाता है। ये हम महसूस करते हैं कि योग के द्वारा मेरे मन की स्थिति बदल गई, मन कमजोर महसूस कर रहा था किसी कारण से, लेकिन फिर हम अपने में शक्ति अनुभव करने लगते हैं, हमारा मनोबल बढ़ जाता है। तो एकाग्रता कैसी होती है, जैसे वो अर्जुन का मिसाल देते हैं, गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को, कौरवों पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। तो जब भी कोई विद्या सीखते हैं तो गुरु जो है उसकी परीक्षा लेता है कि ये कहाँ तक सीख रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन उनकी धनुर्विद्या की परीक्षा लेने की सोची, तो उन्होंने एक पेड़ पर उन्होंने मिट्टी की चिड़िया रखी और उसकी आंख पर निशाना लगाना था। तो उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को कहा, तो युधिष्ठिर से पूछा कि पहले मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी पेड़ दिख रहा है, डालियां, पत्ते, चिड़िया भी दिख रही है, चिड़िया की आंख भी दिख रही है। तो गुरु ने कहा, तुम छोड़ दो, तुमसे निशाना नहीं लगेगा। फिर उन्होंने उसको बुलाया, दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन से भी पूछा, पहले मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो दुर्योधन ने कहा, गुरुजी मुझे भी सब दिख रहा है, पेड़, पत्ते, डाली, चिड़िया, सब। उन्होंने कहा, तुम भी हट जाओ, तुमसे भी निशाना नहीं लगेगा। फिर उन्होंने भीम को बुलाया और भीम ने भी वही जवाब दिया, तो उसको भी हटा दिया। अब अर्जुन की बारी थी, तो जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने क्या कहा, गुरुजी मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिख रही। तो गुरु ने कहा, तुम तीर चलाओ, और उसने तीर चलाया तो सीधा निशाना लगा। इसको कहते हैं एकाग्रता, यानी लक्ष्य के सिवाय और कुछ नजर नहीं आए। तो हमारा लक्ष्य क्या है, परमात्मा, शिव बाबा, और जब मन पूरी तरह से उसकी लगन में मगन है, यानी जब परमात्मा शिव पर ही हमारा मन पूरी तरह एकाग्र है और कोई स्मृति मन में नहीं है, तब हम अनुभूति की स्थिति में चले जाते हैं। फिर हमें वो महसूस होता है कि ईश्वर की शक्तियां उतरकर मुझ में समा रही हैं। और इस स्थिति को ही हम योग अग्नि कहते हैं, यानी जिसमें हमारे पुराने जो भी संस्कार हैं या जो भी हमारे पाप कर्म हैं वो खत्म होते हैं और आत्मा पावन बनती है, प्यूरिटी का अनुभव करती है, पवित्रता का अनुभव करती है। तो योग में हम परमात्मा से रूह रिहान करते हैं, माना जैसे कहा हम दिल की बातें करते हैं और हम उन पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे दिल की बात कभी किसी को नहीं कहेंगे। किसी इंसान पर हम पूरा विश्वास नहीं कर सकते, हो सकता है कि वो आपकी बात किसी दूसरे को कह दे, तो इंसान से हमें धोखा मिल सकता है, लेकिन परमात्मा कभी भी हमें धोखा नहीं देते। तो वो पूरी तरह विश्वसनीय हैं और हमारी बातों को गोपनीय रखते हैं और हमें भय मुक्त करते हैं। भगवान से हमें डरने की जरूरत नहीं। कुछ लोग डरते हैं कि अगर हमने भगवान की भक्ति नहीं की तो कहीं हमें श्राप ना मिल जाए, ऐसा भी सोचते हैं। गुरु से भी डरते हैं कि कहीं गुरु का जो आज्ञा है उसका पालन नहीं किया तो गुरु श्रापित ना कर दे, या हम कोई ऐसा पाप करेंगे या गलत कर्म करेंगे तो भगवान हमें उसका दंड देगा, मैंने ऐसे डरते हैं। लेकिन वो तो प्यार का सागर है, हमारे ही कर्मों से ये सारी चीजें सामने आती। भगवान हमें कोई दंड नहीं देता है और वो सदा ही हमारे परम रक्षक हैं, क्योंकि वो हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। परमात्मा का प्रेम स्वार्थ का प्रेम नहीं, दुनिया में स्वार्थ का प्रेम होता है। जब तक स्वार्थ है तब तक प्यार है, स्वार्थ पूरा हुआ तो प्यार भी खत्म, ऐसा हम संबंधों में देखते हैं। लेकिन परमात्मा हमें निस्वार्थ स्नेह करते हैं और उनसे सदा ही हमें शक्ति का अनुभव होता है। ये संबंध की विशेषता, इसलिए ये संबंध भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इसीलिए दुख के समय हम भगवान को याद कर रहे होते हैं, और भी तो संबंध हैं लेकिन फिर भी कौन याद आ रहा होता है हमें, भगवान याद आता है। तो परमात्मा का संबंध भी उतना ही महत्व रखता है हमारे जीवन में जितने मनुष्यों के संबंध हैं, उससे भी अधिक। तो परमात्मा की याद से हमारे मन की अशुद्धियां, मन के विकार, ये सब नष्ट होने लगते हैं और आत्मा शुद्ध और पावन होती है और हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगती है। और न सिर्फ हमारी आत्मा चार्ज होती है लेकिन हमारे आसपास का वातावरण भी चार्ज होता है। और राजयोग में हमारी बैठक कैसी होनी चाहिए, अब हम विधि समझते हैं। आधार तो हमने समझा, विधि क्या है कि बैठक सहज बैठक, जिस बैठक में हम आराम से 15 मिनट आधा घंटा बिना ज्यादा हिले डुले हम बैठ सके, माना शरीर को स्थिर रख सके। ऐसे हमें पद्मासन लगाना या जैसे अनेक प्रकार के आसन लगाना उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर हम जमीन पर बैठते हैं और हम सुखासन में बैठे जमीन पर, तो हम पालथी मारकर बैठते हैं उसको सुखासन कहते हैं। तो जमीन पर बैठकर के भी योग किया जा सकता है और उसे ज्यादा बेहतर मानते हैं, क्योंकि जब हम जमीन पर बैठते हैं तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से संपर्क में आता है और उससे वो जो एनर्जी सर्कुलेट होती है वो हमें एकाग्रता में मदद करती है। और इसीलिए योगियों को ऐसे ही जमीन पर आसन लगाकर बैठे हुए दिखाते हैं। पर अगर हम नहीं बैठ सकते आयु के कारण, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को कमर में तकलीफ है, या ज्यादा समय वो अपने शरीर को इस तरह से बैठकर स्थिर नहीं रख सकते, तो फिर हम चाहे कुर्सी पर, सोफे पर, जिस भी स्थिति में हम सहज बैठ सकते हैं हम राज्यों का अभ्यास कर सकते हैं। हम तो चलते फिरते भी कर सकते हैं, जैसे कहा आपको कर्म योग है, माना कर्म करते हुए भी, भोजन बनाते हुए भी। कल भी आपने सुना कि भोजन बनाते हुए भी हमें परमात्मा को याद करना चाहिए। तो ये तो मन के विचारों की दिशा को बदलना है। भगवान हमसे कितनी दूर है, कितनी दूर है, एक संकल्प की दूरी पर है। एक थॉट ही तो चेंज करना है और हमारा ईश्वर से योग या हमें उसकी याद आती है, आ जाती है। तो इसीलिए कोई ऐसी बैठक का हमें हठ नहीं करना है कि ऐसे ही बैठना है। कभी मानो कोई मक्खी मच्छर बैठा और उसको हमें उड़ाना है, तो ऐसे नहीं है कि हम मक्खी मच्छर उड़ा नहीं सकते, ऐसे भी नहीं कि हम अपनी पलकें नहीं झपक सकते, क्योंकि राजयोग अभ्यास में हम आंखें बंद करके योग नहीं करते, खुली आंखों से राजयोग करते हैं। क्योंकि राजयोग कर्म योग है और कर्म करते हुए अगर मैंने आंखें बंद कर ली, खाना बनाते हुए अगर मैंने आंखें बंद कर ली, तो फिर हम वो कार्य कर पाएंगे नहीं। तो इसीलिए खुली आंखों से हम अभ्यास करते हैं। पर कई सोचते हैं बंद आंखों से ही ध्यान लगता है, हाँ, नहीं तो बुद्धि इधर उधर चली जाती है। तो बंद आंखों से दो बातें होती हैं। जब हम आंख बंद करते हैं तो हम सोते हैं, सोते समय आंख बंद होती है। और यदि हम थके हुए हैं, आप योग करने बैठे और आप थके हुए हैं, तो क्या होने वाला है? 5 मिनट में आप सो जाएंगे। यहां बैठे बैठे भी सो जाते हैं यहाँ सामने से दिखाई देता है ना, जैसे ही योग की कमेंट्री शुरू होती है 5 मिनट में निद्रा लोक में पहुंच जाते हैं, इतनी शांति मिलती है। तो फिर अगर थके हुए हैं और योग किया तो हम राजयोग नहीं कर रहे हैं, निद्रा योग कर रहे हैं, ऐसे ही कहेंगे ना। तो हमें निद्रा योग करना है, राजयोग करना है, राजयोग करना है। फिर दूसरा होता है, जब हम आंख बंद करते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम करने लगता है। सब कॉन्शियस माइंड से हम सपने देखते हैं, सोकर ही तो सपने देखता है इंसान। तो जब वो स्मृतियां जागृत हो जाती हैं तो फिर मन कहाँ का कहाँ, आप सोचेंगे मुझे इस समय ये बात क्यों याद आ रही है, क्यों याद आ रही है? क्योंकि जो अवचेतन मन में भरा हुआ है वो सारा शुरू हो जाता है। तो फिर उससे निकाल करके मन को भगवान में लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और खुली आंख से हमें मन को परमात्मा में एकाग्र करने का अभ्यास है। आज हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमारा मन लगता है नहीं लगता है, तभी तो हम वो काम कर पाते हैं। तो फिर खुली आंख से हम भगवान में क्यों नहीं मन लगा सकते? आज आप कुछ पढ़ रहे हैं मानो, और उसमें पूरी तरह तल्लीन है, आपके पास से कोई गुजर जाता है और पूछते हैं आपने देखा वो गया, तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं, क्योंकि मैं तो पढ़ रही थी, तो आंखें खुली थी फिर भी मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरा मन कहीं और है। मन नहीं देख रहा तो आंखें खुली होते हुए भी हम नहीं देखते, यहाँ तक कि कुछ किसी ने बोला होगा वो भी मुझे सुनाई नहीं देता। तो हम अगर कहीं और एकाग्र हैं तो हम देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। तो ऐसे ही राजयोग में हमारा मन इस दुनिया से पार भगवान के पास परम धाम में है। तो फिर भले आंखें खुली हैं, कौन आ रहा है जा रहा है हमें दिखाई नहीं देगा, और कौन क्या बोल रहा है वो भी हमें सुनाई नहीं देगा। तो कहीं भी हम एकाग्र होते हैं ना, ढोल भी बज रहे होंगे तो भी हमें नहीं सुनाई देते। हमारी इंद्रियां तभी अनुभव करती हैं जब मन उसके साथ जुड़ा है। अगर मन नहीं जुड़ा है तो फिर ना हम देखते हैं ना हम सुनते हैं। तो राजयोग में हम इस तरह से एकाग्रता का अनुभव करते हैं, और इसीलिए खुली आंख से योग करना ज्यादा अच्छा है। पर मानो कोई मुझे अनुभव हो रहा है, लो योग लग चुका है और फिर मुझे कोई अनुभव हो रहा है, और उस समय मेरी आंख बंद हो जाती है, तो हम आंख बंद कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि आंख बंद करनी ही नहीं है। तो जैसा जिस समय जैसी स्थिति हमें अनुभव होती है उस अनुसार हम अपनी आंखें खुली या बंद कर सकते हैं। और राजयोग में श्वासों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, जैसे कई योग में कहते हैं अपने श्वासों को देखो। वो हम प्राणायाम करते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम करते हैं या योगासन करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन योग करते समय, राजयोग करते समय हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। और योग करते समय हम अपने विचारों को शून्य भी नहीं करते, मन की दिशा बदलते हैं। मन को सांसारिक विचारों से निकाल करके हम सिर्फ आध्यात्मिक विचारों में ले आते हैं, अपने स्पिरिचुअल थॉट्स में हम अपना मन रखते हैं। और मन को हम सप्रेस भी नहीं करते योग अभ्यास के समय, और ऐसे भी नहीं कि हम कहें मेरा मन तो बहुत चंचल है, मेरा मन तो बहुत, जैसे कहा ना, बेलगाम घोड़े की तरह है, कभी लगता ही नहीं। तो हमें मन को दोष नहीं देना है, ये तो मन की प्रकृति है, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा है वो कभी स्थिर बैठेगा क्या, है ना, तो उसकी प्रकृति है। अगर हमें उसे शांत करना है तो हम उसे कोई ना कोई काम में बिजी कर देते हैं, तो अपने आप वो उसमें लग जाता है। तो ऐसे ही मन को जब हम दिशा देते हैं तो फिर मन एकाग्र भी होता है। तो दोष देने वाली बात नहीं, लेकिन अपने मन को हमें कैसे यूज करना है, ये हमें अपने मन को प्रशिक्षण देना है। तो योग में हम यही कर रहे होते हैं। राजयोग में हम कई बार लाइट्स चेंज करते हैं, आपने देखा, व्हाइट लाइट से हम रेड लाइट कर देते हैं, तो वो हमें परम धाम की स्मृति दिलाता है। मन को हम कुछ समय के लिए इस दुनिया से पार ले जाएंगे, परम धाम में रखेंगे। और तीसरा, रेड लाइट जो है वो स्टॉप का सिग्नल होता है कि अभी हमें वर्ल्डली थॉट्स नहीं करने, लेकिन अभी हमें आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन के विचार करने हैं। फिर लाल रंग शक्ति का भी प्रतीक होता है, तो योग में हमारी शक्ति जमा होती है। फिर तीसरा, हम गीत बजाते हैं, आपने देखा है ना, कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है तो प्रभु स्मृति का गीत हम सुनते हैं। तो गीत हमारे मन के विचारों के प्रवाह को बदल देता है। मानो आप सारे दिन काम करते हैं तो मन में कैसे कैसे प्रभाव पड़ते हैं और हमारे मन उस तरह के ही भावों में होता है, लेकिन हमने गीत सुना तो मन के भाव बदल जाएंगे। कोई आप भक्ति गीत सुनते हैं तो मन में भक्ति के भाव आ जाएंगे, कोई आप देशभक्ति का गीत सुनते हैं तो देशभक्ति के भाव आ जाएंगे, कोई आप ऐसे ही फिल्मी गीत सुनेंगे तो चालू फिल्मी गीत भी होते हैं, तो मन पर फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, पड़ता है। तो ऐसे ही हमने प्रभु स्मृति का गीत सुना तो हमारा मन अपने आप परमात्मा की ओर जाता है। तो इसलिए संगीत का भी महत्व होता है। लेकिन ये जो भी साधन हम आपको बता रहे हैं, ये कोई हमेशा ही हम प्रयोग करें, योग के लिए हमें इसकी आवश्यकता ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन शुरू शुरू में, क्योंकि मन को एकाग्र करने में हमें मदद मिलती है, तो लाइट्स चेंज करना, गीत सुनना, या जो भी एक स्थान निश्चित करना जो शांत हो, या हम सेवा केंद्र पर भी जाकर के योग का अभ्यास करें, ये भी हम कर सकते हैं। शुरू शुरू में हम इन सब का सहारा या सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन जब हमें अभ्यास हो जाता है तो फिर हम कहीं भी कभी भी परमात्मा को याद कर सकते हैं। हमेशा इन आधारों को लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो अभी हमने जैसे समझा, जिस विधि से हमें शिव बाबा को याद करना है, राजयोग करना है, उस विधि से ही आज हम योग करेंगे। तो आप सभी सीधे होकर बैठे, अपने मन को तैयार करेंगे एक अंतर यात्रा के लिए, जो यात्रा मेरे मन की शिव बाबा की ओर है। अपने मन को सब तरफ से न्यारा कर लें और स्वयं को चिंतन दें, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं चमकते हुए सितारे के समान प्रकाश पुंज हूं, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक हूं, इस संसार में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए मैंने शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया है। मैं आत्मा सतोगुणी हूं, सात गुण मेरा स्वभाव है, उस इसी के लिए मैं अपने जीवन में प्रयास करती हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति ही सुख देने वाली है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं प्रेम का व्यवहार ही पसंद करती हूँ। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। अपने अनादि स्वरूप में मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। मेरा निज धाम परम धाम है। मैं परम धाम से सृष्टि पर आई हूँ। मेरे परम पिता शिव बाबा भी परम धाम निवासी हैं। ले जाएं मन को इस जगत से पार, उस सुनहरी लाल प्रकाश के लोक में जहां शिव बाबा रहते हैं। मैं अपने मन रूपी चक्षु के द्वारा शिव बाबा को देख रही हूं। उनके समीप अनुभव कर रही हूँ। वो भी मेरे ही समान ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। शिव बाबा आप शांति के सागर हो। उनके शांति के प्रकंपन से मेरा मन शांत होता जा रहा है। आप प्यार के सागर हैं। सर्वशक्तिवान हैं। शिव बाबा की याद से सर्व शक्तियां मुझ में समा रही हैं। जब शिव बाबा की शक्तियां मेरे साथ हैं, तो मेरे लिए कोई भी परिवर्तन लाना मुश्किल नहीं। मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। शिव बाबा आपने मुझे अपना बनाया है। आप ही मेरे सच्चे माता पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। मेरे साथी हैं, खुदा दोस्त हैं। आपने मुझे अपना बच्चा बनाकर अपना प्यार देकर मेरे जन्म जन्मांतर की अभिलाषा को पूर्ण किया है। मेरे परम शिक्षक के रूप में आपने मुझे सत्य ज्ञान दिया। मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग आपके द्वारा मिला है। आप ही मुझे सद्बुद्धि देने वाले हैं। मुझे श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देने वाले हैं। सदा कल्याणकारी सदा रहमदिल करुणा के सागर हो। आपकी याद मेरे मन को शांत कर रही है, मुझे अतींद्रिय सुख का अनुभव करा रही है। मैं सदा ही आपकी श्रीमत पर चलती रहूंगी। शिव बाबा से शांति और शक्ति का अनुभव लेकर मैं अब स्वयं को पुनः इस जगत में अपने शरीर में अनुभव कर रही हूं। मैं स्वयं को आत्मा समझते हुए दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखूंगी। मैं शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं और अन्य आत्माएं भी इन्हीं गुणों का स्वरूप हैं। ॐ शान्ति शान्ति।